ये आकाशवाणी है। अब आप लवली निगम से समाचार सुनिए। लोकसभा चुनाव के कल होने वाली मतगणना की सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। आंध्र प्रदेश और ओडिशा विधानसभा चुनाव तथा कुछ विधानसभा सीटों के उपचुनाव की मतगणना भी कल ही होगी। मतगणना सवेरे 8 बजे शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि मतगणना के रुझान और परिणाम आयोग की वेबसाइट results.eci.gov.in तथा वोटर हेल्पलाइन ऐप पर भी उपलब्ध होंगे। दिल्ली में 7 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। निर्वाचन आयोग मतगणना के बारे में एक निर्देश पुस्तिका जारी की है। आयोग आज नई दिल्ली में मतगणना की तैयारियों के बारे में संवाददाता सम्मेलन करेगा। झारखंड में मतगणना के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि राज्य में 14 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि 14 संसदीय क्षेत्रों के लिए वोटों की गिनती शाम 4 बजे तक पूरी होने की संभावना है। इस बार डाक मतपत्र अधिक हैं। शांतिपूर्ण मतगणना सुनिश्चित करने के लिए मतगणना केंद्रों और उसके आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पश्चिम बंगाल में 12-7 और मथुरापुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के 2 मतदान केंद्रों पर आज पुनर्मतदान हो रहा है। शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। इन दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में 7वें चरण में 1 जून को मतदान हुआ था। पुनर्मतदान का निर्णय चुनाव अधिकारियों, जिला निर्वाचन अधिकारियों और संबंधित पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर किया गया है। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता बरकरार रखी है। प्रदेश की 60 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा ने 36 सीट पर जीत दर्ज की है। पार्टी ने 10 सीट निर्विरोध जीती थी। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राज्य में फिर से भाजपा को प्रचंड बहुमत देने के लिए लोगों का आभार व्यक्त किया। नतीजों के बाद मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया। राज्यपाल ने श्री खांडू और मंत्रिपरिषद से नई सरकार के शपथ लेने तक पद पर बने रहने का अनुरोध किया है। वहीं सिक्किम विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने एक तरफा जीत हासिल की है। 32 सदस्यीय विधानसभा में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने 31 सीटें जीती। 1 सीट सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट को मिली। भारत की लोकप्रिय भुगतान प्रणाली यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ने मई में 20 खरब 45 अरब रुपए के 14 अरब 4 करोड़ लेनदेन का नया कीर्तिमान स्थापित किया। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष मई की तुलना में यह लेनदेन 49% अधिक है। अप्रैल 2016 में यूपीआई शुरू होने के बाद से मई के वर्तमान आंकड़े मूल्य और मात्रा के हिसाब से सबसे अधिक हैं। वहीं तत्काल भुगतान सेवा आईएमपीएस लेनदेन की मात्रा मामूली रूप से 1.45% बढ़कर मई में 558 मिलियन हो गई, जबकि अप्रैल में ये 550 मिलियन थी। पिछले साल के इसी महीने की तुलना की मात्रा में 12% और मूल्य में 15% की वृद्धि हुई है। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर गुवाहाटी, ग्वालपाड़ा और धुबरी में बह रहा है। वहीं कोपिली, बराक, धनसिरी, बुरहीदेहिंग, गोरांग और कुशियारा नदियों का जलस्तर भी कई स्थानों पर बढ़ रहा है। राज्य में पिछले 24 घंटों में 3 लोगों की मौत से बाढ़ में मरने वालों की संख्या 14 पहुंच गई है। कछार में 2 और नौगांव जिले में 1 व्यक्ति की जान गई है। कछार जिले में 1 व्यक्ति और 1 बच्चा लापता है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन में पश्चिमोत्तर, मध्य और पूर्वी भारत में भीषण गर्मी में कमी आने का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आरके जेनामणि ने बताया कि इन क्षेत्रों में लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 7 दिन बिजली गरजने और तेज हवाओं के साथ पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दक्षिण भारत में अगले 7 दिन के दौरान केरल, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप तथा कर्नाटक में भी इसी तरह का मौसम रहेगा। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडन पुरुष डबल्स के तीसरे दौर में पहुंच गए हैं। तीसरे दौर में बोपन्ना और एबडन का सामना भारत के एम श्रीराम बालाजी और मेक्सिको के मिगुएल एजेंस रेयस और वेरेला मार्टिनेस की जोड़ी से होगा। उधर आईसीसी T20 विश्व कप क्रिकेट में कल रात वेस्टइंडीज ने पापुआ न्यू गिनी को 5 विकेट से हरा दिया। गयाना में वेस्टइंडीज ने 137 रन का लक्ष्य 19 ओवर में 5 विकेट पर हासिल कर लिया। बारबाडोज में इस समय नामीबिया और ओमान का मैच जारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।